एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपका सह मेजबान
और मैं आपकी मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, क्रिस्टोफर हार्वे और एच सी जी मैथ्यू की 19वीं सदी का ब्रिटेन।
हाँ, ये वो दौर था जब ब्रिटेन मतलब पूरी तरह बदल गया। एक खेतीबाड़ी वाला देश था और वो बन गया दुनिया की पहली औद्योगिक ताकत और सबसे बड़ा साम्राज्य भी।
जबरदस्त बदलाव का दौर था वो, वाकई।
हाँ, और देखिए, ये कहानी सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है, इसे समझना आज भी काफी जरूरी है।
क्यों? मतलब आज के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमारा लोकतंत्र, ये पूंजीवाद, हमारे शहर, यहाँ तक कि देश की पहचान और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते,
अच्छा,
इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं उसी 19वीं सदी के ब्रिटेन में हैं।
हाँ, ये तो है।
उस दौर के जो झगड़े थे, जो उलझने थीं, वो आज भी हमें किसी न किसी शक्ल में परेशान करती हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं जरा।
बिल्कुल। और इस कहानी को हमारे सामने रखने वाले लेखक भी कमाल के हैं। पहले हैं एच सी जी मैथ्यू, कॉलिन मैथ्यू।
हाँ, कॉलिन मैथ्यू, वो 19वीं सदी के ब्रिटिश राजनीतिक इतिहास के बहुत बड़े जानकार माने जाते थे।
हाँ, मैंने सुना है ग्लैडस्टोन पर उनका काम बहुत मशहूर है।
बिल्कुल, विलियम ग्लैडस्टोन पर उन्होंने बहुत काम किया, उनकी डायरी को एडिट किया, जीवनी लिखी। इससे उन्हें आप कह सकते हैं विक्टोरियन राजनीति की, समाज में धर्म के रोल की और ब्रिटेन में उदारवाद कैसे पनपा, इसकी गहरी समझ मिली।
मतलब सत्ता के गलियारों की नब्ज पहचानते थे वो।
सही कहा। और दूसरी तरफ हैं क्रिस्टोफर हार्वी, ये सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहासकार हैं।
इनकी दिलचस्पी स्कॉटलैंड और समाजवाद में ज्यादा रही है ना?
हाँ, और हार्वी का ध्यान अक्सर उन लोगों और विचारों पर रहा है जो हाशिए पर थे, मतलब जो मुख्य धारा से थोड़े अलग थे।
अच्छा।
वो साहित्य, टेक्नोलॉजी और समाज में हो रहे बदलावों को जोड़कर देखने का एक अलग नजरिया लाते हैं, थोड़ा हटकर।
और यही बात इस किताब को खास बनाती है ना? एक तरफ मैथ्यू की राजनीतिक समझ, सत्ता का नजरिया,
और दूसरी तरफ हार्वी का समाज और संस्कृति पर जोर, आम लोगों पर फोकस।
हाँ, ये ऐसा है जैसे टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों नजरिए एक साथ मिल गए हों।
बिल्कुल, इससे हमें सिर्फ राजा रानी या नेताओं की कहानी नहीं मिलती,
बल्कि आम लोगों की जिंदगी, उनकी मुश्किलें, उनके सपने, सबकी झलक मिलती है। एक पूरी होलिस्टिक तस्वीर उभरती है उस दौर के ब्रिटेन की।
तो किताब आखिर कहती क्या है? मोटे तौर पर यह सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है कि ये हुआ फिर वो हुआ।
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है।
हाँ, ये इस बात की गहरी पड़ताल है कि ब्रिटेन कैसे बदला, कैसे एक ऐसा देश जहां जमींदारों का राज था, खेती मुख्य काम था, वो दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना और सबसे ताकतवर साम्राज्य बन गया। तो नहीं जाती है वो आधी सच है।
अच्छा, आधी सच।
हाँ, असल में ब्रिटेन की ये तरक्की, उसका औद्योगिकीकरण, उसका पूंजीवाद, उसका फैलता साम्राज्य, ये अपने साथ भयानक सामाजिक दुख, राजनीतिक उथल पुथल और विचारों का गहरा संकट भी लेकर आई।
ओह, मतलब बाहर से भले ही ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरा दिखता था,
बिल्कुल
अंदर ही अंदर वो गहरे संघर्षों, बेचैनी और हाँ, डर से भी जूझ रहा था।
ये एक सिक्के के दो पहलू थे, आप कह सकते हैं।
ये विरोधाभास पूरी सदी में दिखता है, लगता है।
हाँ, किताब हमें 1815 से शुरू करती है। नेपोलियन से जंग तो जीत ली, पर ब्रिटेन में शांति नहीं थी, बड़ी उथल पुथल मची हुई थी।
फिर
ये हमें ले जाती है सुधार के दौर में, जब वोट के अधिकार के लिए लड़ाई हुई। 1832 का रिफॉर्म एक्ट एक बड़ा मोड़ था।
51 की वो महान प्रदर्शनी, क्रिस्टल पैलेस वाली।
हाँ, जब ब्रिटेन ने अपनी ताकत का दिखावा किया, फिर साम्राज्य का और फैलना, धर्म पर तीखी बहसें, समाज में अमीर गरीब की गहरी खाई,
और आखिर में
सदी के अंत में नई चुनौतियां, दूसरी औद्योगिक ताकतों से मुकाबला, आयरलैंड की आजादी का सवाल, समाजवाद का उठना और फिर 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत। पूरी सदी का उतार चढ़ाव है इसमें।
चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे चार हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला दौर करीब 1815 से 1832 तक का।
हाँ, इसे हम कह सकते हैं उथल पुथल और नए दौर की आहट का समय। नेपोलियन को हराने के बाद ब्रिटेन जश्न नहीं मना रहा था, बल्कि एक बड़े संकट से गुजर रहा था।
आर्थिक संकट?
हाँ, आर्थिक मंदी थी, बेरोजगारी थी, सामाजिक अशांति थी। जंग खत्म हुई तो लाखों सैनिक बेकार हो गए, चीजों के दाम गिर गए, व्यापार ठप हो गया, बहुत बेचैनी थी।
और सरकार
जिसमें जमींदार भरे पड़े थे उन्होंने अपने फायदे के लिए कॉर्न लॉ 1815 जैसे कानून बना दिए। इससे बाहर से अनाज मंगाना महंगा हो गया, रोटी के दाम बढ़ गए।
तो आम लोगों का गुस्सा भड़कना तो लाजमी था।
बिल्कुल, और इसी गुस्से से आवाज उठी बदलाव की, वोट के अधिकार की। लोग सड़कों पर उतरने लगे, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी।
वो दबाना चाहती थी।
हाँ, डंडे के जोर पर। इसका सबसे भयानक उदाहरण है 1819 का पीटर लूनर संघार। मैनचेस्टर में हजारों लोग शांति से सभा कर रहे थे, राजनीतिक सुधार मांग रहे थे, और उन पर सेना ने हमला कर दिया। बहुत लोग मारे गए।
कितनी भयानक बात है।
हाँ, ये घटना सरकारी जुल्म का एक प्रतीक बन गई। तो इस दौर का निचोड़ ये है कि जिसे हम बाद में स्थिर विक्टोरियन जमाना कहते हैं, उसकी शुरुआत भयानक अशांति और लगभग क्रांति जैसे माहौल में हुई थी।
और वो 1832 का सुधार कानून।
हाँ, 1832 का रिफॉर्म एक्ट, जिसने कुछ अमीर मध्यम वर्ग के लोगों को वोट का अधिकार दिया, वो सरकार की कोई मेहरबानी नहीं थी।
वो तो दबाव का नतीजा था।
बिल्कुल, वो नीचे से आए भारी दबाव का नतीजा था। एक तरह से बेमन से दी गई छूट थी, और इसने एक पैटर्न सेट कर दिया ब्रिटेन में। बदलाव अगर आएगा तो क्रांति से नहीं, बल्कि ऐसे ही दबाव में किए गए सुधारों से।
हाँ, और ये हमें दूसरे दौर पर लाता है, सुधार का जमाना और शुरुआती विक्टोरियन उलझने, करीब 1832 से 1851 तक।
सही, 1832 के सुधार से राजनीतिक माहौल थोड़ा बदला, लेकिन आम लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई, बल्कि शायद बढ़ गईं।
कैसे?
जैसे 1834 का नया गरीब कानून। इसने वर्कहाउस बनाए। ये ऐसी जगहें थीं जहां गरीबों को बहुत ही बुरी हालत में रखा जाता था।
मैंने इनके बारे में पढ़ा है, डिकिंस के उपन्यासों में भी जिक्र आता है।
हाँ बिल्कुल, कहने को तो मकसद लोगों को काम सिखाना था, पर असल में ये गरीबों के लिए सजा जैसी थी। इसी माहौल में उठा चार्टिस्ट आंदोलन।
ये मजदूर वर्ग का पहला बड़ा राजनीतिक आंदोलन था।
हाँ, ब्रिटेन के इतिहास में पहला जन श्रमिक वर्ग राजनीतिक आंदोलन। उनकी मांग थी कि सभी मर्दों को वोट का अधिकार मिले, चुनाव गुप्त हों वगैरह। लाखों लोगों ने उनकी अर्जियों पर दस्तखत किए थे।
और ये भूखे 40 का दशक भी इसी दौरान था।
हाँ, आयरलैंड में आलू की फसल बर्बाद होने से जो अकाल पड़ा 1845-49, वो तो भयानक था। लाखों लोग मारे गए या देश छोड़ने पर मजबूर हुए।
और ब्रिटिश सरकार का रवैया
बेहद ढीला और कह सकते हैं बेपरवाह। वो लेज़र फेयर के सिद्धांत में यकीन रखते थे, मतलब सरकार को बाजार के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए,
चाहे लोग भूखे ही क्यों न मर रहे हों।
हाँ, ये उस सोच की एक भयानक विनाशकारी विफलता थी।
लेकिन इसी दौर में वो कॉर्न लॉ भी खत्म हुआ है ना।
हाँ, ये एक बड़ा कदम था। 1846 में प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील ने अपनी ही पार्टी के विरोध के बावजूद वो बदनाम कॉर्न लॉ खत्म कर दिया।
इसका असर क्या हुआ?
खाने पीने की चीजें सस्ती हुईं, कारखानेदारों को भी फायदा हुआ, और इसने चार्टिस्ट आंदोलन की भी हवा थोड़ी निकाल दी।
तो इस दौर से क्या समझ आता है?
यही कि सरकार ने, खासकर पील जैसे नेताओं ने, समाज को पूरी तरह बिखरने से बचाने के लिए कुछ जरूरी सोची समझी रियायतें दीं। मध्यम वर्ग अब राजनीति में ज्यादा ताकतवर हो गया था।
और 1851 की वो महान प्रदर्शनी।
हाँ, वो क्रिस्टल पैलेस, वो एक तरह से इन मुश्किल भरे दशकों को पीछे छोड़कर ब्रिटेन की औद्योगिक ताकत का जश्न मनाने की कोशिश थी। जैसे कहा जा रहा हो, देखो हम कितने महान हैं, सारी मुश्किलें पीछे छूट गईं।
बिल्कुल, और इसके बाद शुरू होता है तीसरा दौर, करीब 1851 से 1875 तक, मध्य विक्टोरियन शिखर और साम्राज्य का फैलाव। इसे अक्सर संतुलन का युग कहा जाता है।
हाँ, ये वो समय था जब ब्रिटेन दुनिया की आर्थिक महाशक्ति था, और देश के अंदर भी थोड़ी शांति थी तुलनात्मक रूप से।
ब्रिटेन सचमुच दुनिया का कारखाना बन गया था। रेलवे लाइनें बिछ रही थीं, लोहे के बड़े बड़े जहाज बन रहे थे।
लंदन दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर था। इस तरक्की का थोड़ा फायदा हुनरमंद मजदूरों तक भी पहुंचा।
अच्छा,
उनकी तनख्वाहें बढ़ी।
हाँ,
इनकी तनख्वाहें बढ़ी, और इनका ध्यान अब क्रांति से हटकर अपनी ट्रेड यूनियन बनाने और खुद को बेहतर बनाने पर लग गया। इन्हें मजदूरों का अभिजात वर्ग, एरिस्टोक्रेसी ऑफ लेबर, कहा जाने लगा।
और राजनीति में ग्लैडस्टोन बनाम डिज़राइली।
हाँ, विलियम ग्लैडस्टोन लिबरल और बेंजामिन डिज़राइली कंजर्वेटिव, इनके बीच जोरदार मुकाबले का दौर था। ये सिर्फ नेता नहीं थे, ये देश के लिए दो अलग अलग विजन पेश कर रहे थे।
और मजे की बात यह है कि कंजर्वेटिव डिज़राइली ने ही 1867 में दूसरा सुधार अधिनियम पास करवाया था।
हाँ बिल्कुल, ये एक चौंकाने वाला कदम था। इसने शहरों में रहने वाले बहुत सारे मजदूरों को भी वोट का अधिकार दे दिया। इसने पार्टियों को मजबूर किया कि वो आम लोगों तक पहुंचे, उन्हें अपनी तरफ लाएं।
और हाँ, साम्राज्य। इस दौर में साम्राज्य और भी अहम हो गया। 1857 में भारत में जो विद्रोह हुआ,
हाँ, वो ही बहुत बड़ा मोड़ था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया।
इसका असर अंग्रेजों की सोच पर भी पड़ा होगा।
बहुत ज्यादा। इस घटना ने अंग्रेजों के मन में भारतीयों और दूसरी नस्लों के लिए सोच को और पक्का और ज्यादा नस्लवादी बना दिया और साम्राज्य ब्रिटिश पहचान का एक जरूरी हिस्सा बन गया।
तो इस दौर का लबोलुआब ये है कि ब्रिटेन अपने आत्मविश्वास के चरम पर था।
हाँ, ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक व्यवस्था सबको साथ लेकर चल सकती है, अर्थव्यवस्था अपराजय है और साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा।
लेकिन
लेखक हमें याद दिलाते हैं कि ये चमक दमक एक नाजुक बुनियाद पर टिकी थी। ब्रिटेन अपने साम्राज्य पर बहुत ज्यादा निर्भर था। अमीरी के नीचे भयानक गरीबी छिपी थी और दूसरे देश अब औद्योगिक दौड़ में उसे टक्कर देने लगे थे, जर्मनी अमेरिका।
हाँ, और यही चुनौतियां चौथे और आखिरी दौर में खुलकर सामने आती हैं। विक्टोरियन दौर के अंत में शक और नई मुश्किलें, करीब 1875 से 1914 तक।
सही कहा। इस दौर में वो मध्य विक्टोरियन जमाने का भरोसा टूटने लगा। बेचैनी बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था मुश्किल में थी और राजनीति में संकट गहरा रहा था।
अर्थव्यवस्था में वो महान अवसाद आया।
हाँ, ये 1930 वाले से अलग है, पर इसे भी ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। इसमें चीजों के दाम गिरे, मुनाफा कम हुआ, तरक्की धीमी पड़ गई। जर्मनी और अमेरिका जैसे नए खिलाड़ी ब्रिटेन को कड़ी टक्कर दे रहे थे।
तो इसका नतीजा?
इस दबाव में ब्रिटेन और ज्यादा साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ा। अफ्रीका में नए इलाके कब्जाना ताकि अपने माल के लिए बाजार और कच्चा माल मिल सके। इसे नया साम्राज्यवाद कहते हैं। अफ्रीका का बंटवारा इसी दौर में हुआ।
और देश के अंदर?
देश के अंदर भी नई ताकतें उठ रही थी। नया संघवाद यानी कम हुनरमंद मजदूरों के यूनियन बने, बड़ी बड़ी हड़तालें हुईं। समाजवाद एक राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरा और 1900 में लेबर पार्टी बनी।
ये सब पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे?
बिल्कुल। और राजनीति, वो तो आयरिश होम रूल के मुद्दे पर जैसे फंसी गई।
होम रूल मतलब आयरलैंड के लिए अपने घरेलू मामलों में आजादी।
हाँ, ग्लैडस्टोन इसे हल करना चाहते थे, पर इस चक्कर में उनकी अपनी लिबरल पार्टी टूट गई और सालों तक ब्रिटिश राजनीति इसी मुद्दे पर अटकी रही। ये दिखाता था कि ब्रिटेन अपने ही घर में राष्ट्रीय पहचान के सवाल से जूझ रहा था।
साम्राज्य में भी सब ठीक नहीं था। बोअर युद्ध का जिक्र आता है।
हाँ, दक्षिण अफ्रीका में बोअर लोगों के साथ हुई लड़ाई 1899-1902 ने ब्रिटिश फौज की कमजोरियां और साम्राज्य चलाने का भारी खर्चा उजागर कर दिया। और इसी समय सफ्राजिट्स,
महिलाओं के वोट के अधिकार के लिए लड़ने वाली औरतें,
हाँ, उन्होंने मर्दों के दबदबे वाले राजनीतिक सिस्टम को जोरदार चुनौती दी। उनका संघर्ष काफी उग्र भी हुआ था।
तो इस आखिरी दौर का सार ये है कि सदी के बीच का वो सुनहरा दौर, वो संतुलन एक तरह का भ्रम था।
हाँ, कह सकते हैं। जिन ताकतों को ब्रिटेन ने खुद बढ़ावा दिया था, औद्योगिक पूंजीवाद, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, वही अब उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर रही थी, नियंत्रण से बाहर हो रही थी। 1914 में जब पहला विश्वयुद्ध शुरू हुआ, ब्रिटेन बाहर से भले ही ताकतवर दिखता था, पर अंदर से वो बटा हुआ था और भविष्य को लेकर अनिश्चित था।
वाह, क्या जबरदस्त उतार चढ़ाव भरी कहानी है। अगर हम इसमें से कुछ बड़े सबक या थीम्स निकालें तो सबसे पहला तो यही है, औद्योगीकरण का इंजन और उसकी इंसानी कीमत।
बिल्कुल, यही वो बदलाव था जिसने सब कुछ बदल दिया। पैसा आया, नई तकनीक आई, पढ़ा लिखा मध्यवर्ग बना, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।
फैक्ट्रियों में भयानक हालात, शहरों में गंदगी, बीमारी, गरीबी
और पुराने जीने के तरीके खत्म हो गए, पारंपरिक जीवन का विनाश हुआ। हमारे यहाँ भी जब अंग्रेजों ने अपने कारखाने लगाए, रेलवे लाइनें बिछाईं, तो हमारे कारीगरों का काम छिन गया, गांव उजड़ गए। ये उसका ही एक पहलू था।
दूसरा बड़ा सबक है ब्रिटेन का रास्ता, सुधार क्रांति नहीं।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। यूरोप के कई देशों में उस दौर में क्रांतियां हुईं, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ के शासक वर्ग ने, कह सकते हैं, होशियारी दिखाई।
मतलब?
जब दबाव बहुत बढ़ जाता तो वो कुछ रियायतें दे देते थे ताकि पूरी व्यवस्था ही न उलट जाए। इसे कह सकते हैं समय पर थोड़ा झुक जाओ ताकि टूटने से बच जाओ वाली रणनीति।
हमेशा इंसाफ पर आधारित नहीं थी शायद, पर इसने बड़े टकराव टाले।
हाँ, ये बहस का मुद्दा है। तीसरा, मध्यम वर्ग का उदय और उसका दबदबा।
ये नया वर्ग था, व्यापारी, कारखानेदार, डॉक्टर, वकील।
हाँ, इन्होंने मेहनत, परिवार, नैतिकता और इज्जतदारी पर जोर दिया। इन्होंने न सिर्फ अमीरों, जमींदारों को चुनौती दी, बल्कि अपने जीने के तरीके और सोच को पूरे समाज पर लागू करने की कोशिश की।
जिसे हम विक्टोरियन नैतिकता कहते हैं, वो काफी हद तक इसी वर्ग की देन थी। कभी कभी थोड़ी दिखावटी भी लगती है ना?
बिल्कुल, और चौथा अहम मुद्दा है साम्राज्य की भूमिका, जो जरूरी भी थी और विरोधाभासी भी।
लेखक साफ कहते हैं कि साम्राज्य ब्रिटेन की कहानी का कोई साइड शो नहीं था, वो कहानी का केंद्र था।
हाँ बिल्कुल, कच्चा माल वहीं से आता था, बना हुआ माल वहीं बिकता था, लाखों लोग ब्रिटेन से निकलकर साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में बस गए। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व भी था।
इसने ब्रिटिश लोगों की सोच भी बनाई कि वो दुनिया में सबसे बेहतर हैं, दूसरों पर राज करना उनका हक है, वो व्हाइट मैन्स बर्डन वाली बात।
सही कहा। और विरोधाभास, घर में लोकतंत्र और संसद की बातें,
और साम्राज्य में तानाशाही राज, ये दोगलापन साफ दिखता था, खासकर भारत जैसे देशों में।
हाँ, और पांचवा थीम शायद थोड़ा भावनात्मक है, भरोसे से चिंता तक का सफर।
सदी की शुरुआत डर और अनिश्चितता से हुई,
बीच में जबरदस्त आत्मविश्वास आया, हम दुनिया पर राज करते हैं वाला भाव,
और सदी के आखिर तक आते आते गहरी चिंताएं घिराईं। अर्थव्यवस्था का क्या होगा, साम्राज्य कैसे बचेगा, समाजवाद का कैसे सामना करेंगे।
ये दिखाता है कि देशों का मूड भी कैसे बदलता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। एक पूरी भावनात्मक यात्रा है सदी की।
इस किताब में कुछ विचार वाकई बहुत गहरे हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, कुछ खास बातें जो दिमाग में रह जाती हैं।
हाँ, अगर उन्हें सीधे शब्दों में कहें तो, जैसे पहला, विक्टोरियन ब्रिटेन की स्थिरता कोई कुदरती चीज नहीं थी, बल्कि समाज के अंदर चल रहे झगड़ों के ऊपर बड़ी मुश्किल से साधा गया एक नाजुक संतुलन था।
मतलब वो शांति ऊपर से दिखती थी, अंदर लगातार खींचतान चलती रहती थी, उसे बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती थी, वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं थी।
बिल्कुल। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्य 19वीं सदी के ब्रिटेन का कोई बाहरी हिस्सा नहीं था, वो उसका अंदरूनी हिस्सा था।
ये बहुत जरूरी बात है, हम अक्सर ब्रिटेन के इतिहास और उसके साम्राज्य के इतिहास को अलग अलग करके देखते हैं।
लेखक कहते हैं ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे, गुंधे हुए थे, एक के बिना दूसरे को समझना मुश्किल है।
तीसरा, औद्योगिक क्रांति कोई अचानक हुआ धमाका नहीं थी, बल्कि काम, परिवार और समाज के आपसी रिश्तों में धीरे धीरे हुआ बदलाव था।
हाँ, हम सोचते हैं औद्योगिक क्रांति मतलब रातों रात फैक्ट्रियां लग गईं, पर ये एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें लोगों ने धीरे धीरे नई चीजों को अपनाया, उनके साथ जीना सीखा, एडजस्ट किया, एक मानवीय अनुकूलन की प्रक्रिया थी।
और चौथा,
विक्टोरियन लोकतंत्र किसी ऊंचे आदर्शों से नहीं, बल्कि समाज के अलग अलग गुटों के अपने अपने फायदों के बीच हुई सौदेबाजी से निकला।
अच्छा, मतलब ये ब्रिटिश राजनीति के व्यवहारिक होने पर जोर देता है, सुधार इसलिए नहीं हुए कि वो सैद्धांतिक रूप से सही थे,
बल्कि इसलिए कि उस वक्त उनकी जरूरत थी या वो राजनीतिक मजबूरी थे, प्रैक्टिकल नेगोशिएशन था।
तो इस सारे इतिहास से आज हम क्या सीख सकते हैं, आज की जिंदगी में ये बातें कैसे काम आ सकती हैं?
देखिए, कई सबक हैं। पहला, टेक्नोलॉजी से होने वाले बड़े बदलावों का सामना कैसे करें।
जैसे आज डिजिटल क्रांति हो रही है, AI आ रहा है।
बिल्कुल, जैसे औद्योगिक क्रांति ने समाज को हिला दिया था, वैसे ही आज ये नई टेक्नोलॉजी हमारे जीने का तरीका बदल रही है। यह इतिहास बताता है कि ऐसे बदलावों के बुरे असर को कम करने के लिए सरकारों को योजना बनानी पड़ती है, लोगों की मदद के लिए सेफ्टी नेट बनाने पड़ते हैं,
और ये देखना पड़ता है कि फायदा सब तक पहुंचे, कुछ ही लोगों तक सिमट कर न रह जाए।
सही कहा। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन यानी दुनिया का आपस में जुड़ना। 19वीं सदी में भी दुनिया बहुत जुड़ी हुई थी ब्रिटिश साम्राज्य और व्यापार के जरिए, आज भी है।
तो इतिहास क्या दिखाता है?
इतिहास दिखाता है कि इससे तरक्की तो होती है, पर साथ में देशों के बीच होड़ बढ़ती है और अमीर गरीब का फर्क भी बढ़ सकता है, तो हमें इसके फायदे और नुकसान दोनों पर नजर रखनी होगी, बैलेंस बनाना होगा।
तीसरा, लोकतंत्र कैसे बनता और बचता है।
हाँ, ये किताब दिखाती है कि वोट जैसे अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए लड़ना पड़ता है। चार्टिस्ट और सफ्राजेट्स का संघर्ष यही बताता है।
और ये भी कि सरकारें कैसे जन आंदोलनों से निपटती हैं, कभी दबाकर, कभी थोड़ी बहुत मांगे मानकर, ये आज भी दुनिया भर में दिखता है ना?
बिल्कुल। चौथा, समाज में बढ़ती गैर बराबरी का खतरा। विक्टोरियन जमाना भयानक गरीबी और अमीरी के फर्क के लिए जाना जाता है।
किताब बताती है कि इससे समाज में कितनी बेचैनी और अस्थिरता पैदा हुई।
हाँ, उस जमाने में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर जो नीतियां बनी, उनकी कामयाबी और नाकामी से आज भी हम सीख सकते हैं। सबक साफ है, बहुत ज्यादा असमानता समाज के लिए खतरनाक है, अस्थिरता लाती है।
और पांचवा?
पांचवा, देश के अंदर अलग अलग पहचान और तनाव। ब्रिटेन आयरलैंड के मसले को ठीक से नहीं सुलझा पाया और इसका नतीजा बुरा हुआ।
ये दिखाता है कि एक देश के अंदर अलग अलग संस्कृति और राजनैतिक इच्छाओं वाले समूहों को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल और कितना जरूरी हो सकता है।
हाँ, ये बात आज भी कई देशों पर लागू होती है, जहां अलग अलग समुदाय अपनी पहचान और हक के लिए आवाज उठा रहे हैं।
तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आई वो ये है कि जिसे हम आज की आधुनिक दुनिया कहते हैं वो कोई साफ सुथरी सीधी साधी प्रक्रिया से नहीं बनी।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत उथल पुथल, दर्द और विरोधाभासों से भरी कहानी है। आज का पूंजीवाद, लोकतंत्र, शहरों की जिंदगी, दुनिया भर में फैला फाइनेंस, इन सब की शक्ल उसी 19वीं सदी में गढ़ी गई थी।
और उस दौर के बुनियादी तनाव और उलझने आज भी हमारे साथ हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल। श्रोताओं के लिए कुछ मुख्य बातें अगर हम समेटें।
पहली,
तरक्की कभी सीधी रेखा में नहीं होती। ये सोचना कि इतिहास बस बेहतर से बेहतरीन होता जाता है एक मिथक है। असल बदलाव मुश्किल होते हैं, उनमें टकराव होता है, कोई जीतता है कोई हारता है।
दूसरी, समाज में शांति और स्थिरता अपने आप नहीं आ जाती, उसे बनाना पड़ता है और बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, समझौते करने पड़ते हैं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है।
सही। और तीसरी, शायद सबसे अहम बात, अतीत कभी मरता नहीं, वो हमारे आज में जिंदा रहता है।
19वीं सदी के बड़े सवाल, पूंजी और मेहनत का रिश्ता, अमीर गरीब की खाई, दुनिया में देश की जगह, देश के अंदर अलग अलग समूहों के बीच तनाव,
ये आज भी हमारी दुनिया को तय कर रहे हैं। उस सदी को समझना एक तरह से आज की दुनिया की बुनियाद को समझना है।
और शायद सोचने के लिए एक आखिरी बात ये छोड़ी जा सकती है, जिस तरह 19वीं सदी के ब्रिटेन ने उन बड़े बदलावों का सामना किया, कभी लड़खड़ाते हुए कभी संभलते हुए, उसी तरह आज हम भी टेक्नोलॉजी और दुनिया में हो रहे जबरदस्त बदलावों के बीच खड़े हैं।
हाँ, इतिहास हमें तैयार जवाब तो नहीं देता, पर यह हमें सही सवाल पूछने और अलग अलग रास्तों के नतीजों के बारे में सोचने में मदद जरूर कर सकता है।
हम उन बदलावों को कैसे संभालेंगे, ये सवाल हमारे सामने है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कतरा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।